ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी आए हैं, तो सभी एक हाथ की ताली से आदरणीय राजू भाई जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय भाई जी, जो कि हम रोज मुरली सुनते हैं, तो मुरली आदरणीय भाई जी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों को जोड़कर चारों ओर मुरली आदरणीय भाई जी भेजते हैं और साथ साथ देश विदेश चारों ओर सेवाएं करते हैं। ऐसे आदरणीय भाई के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, किसी के पास अगर कुछ नहीं है तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास अगर सब कुछ है तो उनसे जलती है ये दुनिया, किसी के पास अगर सब कुछ है तो उनसे जलती है ये दुनिया। और हमारे पास आदरणीय आप जैसे भाई है जिसके लिए तरसती है ये दुनिया, जिसके लिए तरसती है ये दुनिया। ऐसे त्याग तप के मूरत जो कि बाप दादा देवी देवताओं के गायन करते हैं, तो ऐसे साक्षात फरिश्ता स्वरूप आदरणीय भाई जी आज उनके मुख द्वारा हम सभी पिता परमात्मा के अथवा जो बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान में वृद्धि हो, ऐसे मार्गदर्शन के बोल हम आदरणीय भाई जी से सुनेंगे। तो फिर से एक बार हम सभी दिल से आदरणीय भाई जी का एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। आदरणीय भाई जी का स्वागत है।
ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में एक तरफ ज्ञान की बरसात हो रही है और दूसरी तरफ पानी की बरसात। आपका बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है। परेशान तो नहीं हुए ना, क्योंकि आबू की बरसात तो गाई हुई है। एक तरफ बरसात पड़ती है, बरसात थोड़ा कम होती है, फागी आ जाती है। आप समझ सकते हो, जब बाबा अपनी बहनों को लेकर के आबू आए उस समय क्या हुआ होगा। कराची में रहने वाले गर्म देश से सागर के किनारे से पहाड़ पर आ गए और यहां आते ही मई में आए और जून में बरसात शुरू हो गई। और ऐसी ही बरसात उस समय होती थी, अभी तो बीच में नहीं होती थी। बहुत साल के बाद मैंने भी पहली बार इतनी बरसात देखी है। 45 साल मधुबन में हो गए, लेकिन इतना कंटिन्यू बरसात चले, नक्कीले 3 फुट ओवरफ्लो हो रही है, 3 फुट पानी जा रहा नीचे। तो आप समझ सकते हो कि बाबा ने कैसी कैसी परिस्थितियों को पार किया। मुझे आज विषय दिया है, मैं तृप्ति बहन चली गई क्या, आज चली गई नीचे। मुझे कहा था मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन फोन नहीं लग गए थे, इसलिए समझती होगी आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर भी आए लोग क्लास कराने के लिए। कोई कोई नहीं आए, कोई कोई आए, सब आए। अच्छा, चलो, ड्रामा में ये सीन भी आपको देखने को मिली, सबने पहली बार देखा ना ऐसा। अच्छा, तो बाबा ने भी कई प्रकार की परिस्थितियों को बहुत सहज रीति से हंसते हंसते खेलते खेलते पार किया, पार कराया। मुझे यही विषय दिया था कि समाधान स्वरूप कैसे बने। समस्याओं को हम सब जानते हैं, कलयुग के अंतिम समय में हर क्षेत्र में अति हो रही है और अति के वातावरण में समस्याएं, प्रॉब्लम्स ना आए ऐसा नहीं होता, होंगे ही, आएंगी ही। ये तो हम सब जानते हैं। और बाबा कहते जब तुम मेरे बच्चे बनते हो तो और माया परीक्षा लेने के लिए आपके आमने सामने आती है, उसमें पास हो करके दिखाना, क्योंकि इतने समय से तो माया से दोस्ती थी इसलिए पता नहीं चलता था ये माया है। लेकिन जब हम उसको छोड़ करके बाबा के बने तो उसको भी लगता है कि ये हमारे ग्राहक जा रहे हैं, इसलिए परीक्षाएं तो लेगी। बाबा कहता है सागर में अगर लहरें ना आए तो सागर क्या, लहरें तो आना स्वाभाविक है, इसलिए लहरों में लहराना सीख जाओ। खेल के अंदर खिलाड़ी ये नहीं सोचता है कि मेरी तरफ बॉल ना आए, वो तो आह्वान करता है भले आए और जोर से किक लगाएंगे नहीं, इसलिए डरता नहीं है, वो आह्वान करता है। आप सभी डरते तो नहीं हो ना, कोई भी बातें आती हैं, क्योंकि 84 जन्म में हमने बहुत से हिसाब किताब बनाए हैं, 21 जन्म तो चलो संगम की प्रारब्ध भोगी, सतयुग और त्रेता के अंदर कर्म कर्म हुए, आत्म अभिमानी स्थिति थी इसलिए कोई हिसाब किताब नहीं बने, लेकिन प्योरिटी की परसेंटेज में तो गिरावट आई, कलाएं कम होती गई। लेकिन द्वापर युग से देहमान शुरू हुआ और उसके कारण विकारों के अधीन होकर के, कर्मेंद्रियों के अधीन होकर के जो गलतियां हुई, पाप हुए, एक दूसरे को जो दुख दिया, तो उसका परिणाम आज भी कलयुग के अंत तक आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये 63 जन्मों के खाते को समाप्त करने का समय है। योग बल से सहज चुकटू कर सकते हो, योग बल है श्रेष्ठ कर्मों की पुण्य की पूंजी है, दुआओं की शक्ति है, उसके आधार से कोई भी परीक्षाएं कोई भी समस्याएं आती हैं उनको सूले से कांटा बनाया जा सकता है। आएंगी नहीं ऐसा नहीं, आएंगी, लेकिन जिनके पास शक्ति है, योग का बल है, वो हंसते हंसते उस बात को पार कर लेते हैं। इसलिए कोई भी परीक्षा कोई भी समस्या से घबराना नहीं, डरना नहीं, क्यों आ गई, कैसे आ गई, मेरे पास ही कैसे आई, इतने सब हैं मेरे पास ही सब बातें आती हैं, तो उसमें भी बाबा कहता है तुमको खुशी होनी चाहिए, कम से कम हमारा कर्जा तो उतर रहा है, इसलिए डरो नहीं घबराओ नहीं, बाबा को साथी बना लो। संगम युग पर हम सबका इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान हम सबका सेवाधारी बना है, बाबा कहो और बाबा हाजिर हो जाए, इतना दिल का प्यार हो कि कोई भी बात आती है तो बाबा को साथी बना करके उस समस्या को पार कर लो। मूंझना नहीं, पूछना नहीं क्यों क्या कैसे कैसे करूं अब क्या होगा, बाबा कहता बात आती है बहुत धैर्यता के साथ, बहुत मन बुद्धि की एकाग्रता के साथ बाबा के साथ कनेक्ट होकर के उसकी शक्ति को लो, उसकी प्रेरणा को कैच करो, आने वाली प्रॉब्लम्स को पार कर लो, समाधान स्वरूप बन जाओगे। तो हलचल में ना आना, कोई भी बात आ जाए, कभी शरीर के द्वारा भी परीक्षाएं आती हैं, आत्मा को उसकी भोगना भी भोगनी पड़ती है, पता नहीं चलता, डॉक्टर्स भी नहीं पता बता पाते हैं कि बीमारी क्यों आई है क्या, और कई बार अपनी जब चेकिंग कराओ तो ऐसे लगता है रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, फिर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों दिखाई दे रही हैं, कभी यहाँ दर्द कभी यहाँ दर्द कभी कुछ कभी कुछ। बाबा कहता है इससे भी डरो नहीं, डॉक्टर बदलते नहीं रहो, निश्चय बुद्धि होकर के कुछ योग का प्रयोग करो, कुछ दवा की दुआ लो, दवा भी ले लो दुआ भी ले लो, ठीक हो जाओगे। हलचल में ना आ जाओ, पता नहीं अब मेरा क्या होगा, क्योंकि ये हिसाब किताब तो किसी न किसी रूप में सबके सामने आते हैं शरीर के, और उसमें अगर हलचल में आ गए तो खुशी गायब हो जाएगी, उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा, भीड़ पर पड़े रहेंगे। देखो हमारी दादी जान की इतनी उम्र में कोई भी प्रॉब्लम शरीर की है, कितनी विल पावर है, आत्मा की पावर देखो। अभी दो दिन पहले बॉम्बे हॉस्पिटल में थी, तीन दिन पहले 20 तारीख को बॉम्बे हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने कहा दादी आप 10-15 दिन रेस्ट करना, छुट्टी मैं दे देता हूँ, वैसे हॉस्पिटल में रहो तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको जाना ही है तो सेंटर पर रहो, रेस्ट करो। छुट्टी लेकर के हॉस्पिटल से सेंटर पर आई, रात को आई और सुबह 8 बजे बैठ गई, मुझे तो मधुबन जाना है। दादी डॉक्टर की छुट्टी नहीं है, रेस्ट करो। नहीं मुझे तो जाना है, कार मंगाओ, मुझे प्लेन नहीं चाहिए, प्लेन आए ना आए मैं कार में चलूंगी। खड़ी हो गई, मुझे चलना है। क्या करेंगे सब भाई बहन है, चुप, चलना है तो चलना है। फिर वहां से निकली, फ्लाइट लिया और फ्लाइट लेकर के सीधा उदयपुर, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली, उदयपुर आई और उदयपुर से मधुबन पहुंच गई। सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक बैठे बैठे मिल रही है सबसे, एक एक को दृष्टि दे रही है। 10 दिन कुछ नहीं बोली और आते ही यहाँ पर मेरे को बुलाया, ये लिखो, ऐसे ऐसे लिखो सबको याद पत्र कि मैं ठीक ठाक मधुबन पहुंच गई हूँ। सबको याद किया, सबको पत्र लिखवाया। कितनी हिम्मत है आप समझ सकते हो, क्या विल पावर है। और दूसरे दिन कहती भट्टी चल रही है ना, मुझे ले चलो, इतनी बरसात पड़ रही है, मैं मिलने चलूंगी, सबसे मिलने चलूंगी। फिर हमारी 2200 बहनें आई हैं, कुमारियां टीचर्स, उनके ग्रुप में मिलने गई, उनको 5-7 मिनट दृष्टि दी, कुछ महावाक्य उच्चारण किए, फिर वहां से भाइयों की भट्टी में, हम लोगों की भट्टी अलग चल रही, वहां भी आ गई, वहां भी 2-5 मिनट बैठ के दृष्टि दे के योग करा के थोड़ा बोल के चली गई। फिर शाम को आई, फिर आज भी आ गई। कहाँ रेस्ट करती दादियां, उनको नींद नहीं आती है। नहीं, हमारे घर में इतनी सेवाएं, बाबा के इतने सब बच्चे आए हैं, मुझे चलना है, मुझे मिलना है। तो आप समझ सकते हो विल पावर कहाँ से आई है। समस्या शरीर की कोई कह सकता है, इतनी एज है, इतनी बीमारी है, कुछ भी नहीं है, चलो चलो ठीक हो जाएगा सब। तो इन दादियों ने समाधान स्वरूप बन करके हमको सिखाया है, बाबा ने भी समाधान स्वरूप बन करके सिखाया, ऐसे ऐसे समस्याएं आएंगी। सबसे बड़ी समस्या आई जो बहुत प्यार से पिस्ता बादाम खाने वाले कराची में प्रसिद्ध था, वो मंडली का पिस्ता बादाम, और जब यहां आए आबू में तो रोटी भी खाने के लिए नहीं, पैसा भी सब खत्म हो गया, ट्रेन का भाड़ा, शिप का भाड़ा, किराया 400 लोगों को लाना करना, बहुत सारा पैसा गया। और यहाँ जब आए तो कोई सहयोग देने के लिए तैयार नहीं, जिन संबंधियों ने निमंत्रण दिया था ना, उन्होंने भी सहयोग नहीं दिया। वो समझने लगे ये देखें अभी क्या करते हैं, अभी संस्था तो टूटेगी, फिर मेरी बच्चियां मेरे पास वापस आ जाएंगी। लेकिन बाबा का निश्चय क्या था, कितना अचल अडोल एक रस। आप हिस्ट्री हाल में जाना, वहां देखना एक झरना बह रहा है और बाबा ऐसे आराम से लेटा हुआ है, वो बेगरी पार्ट का फोटो है, प्रिंस की तरह, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कौन खिलाएगा, क्या होगा यज्ञ का, आगे कैसे चलेगा। बाबा कहता है तुमने मेरे को जीवन दिया है, किसको दिया है, उसको दिया है ना, शिव बाबा को समर्पित हुए हो ना। जब शिव बाबा पर इतना निश्चय है तो फिर जो सबका दाता है वो आपका बाप है, इसलिए डरने की क्या बात है। इतना बाबा को विश्वास, इतना निश्चय था, जो सब बच्चों को अचल अडोल बनाया। और जो थोड़े कच्चे थे ना, हिलने वाले, वो सोचने लगे मैं तो जाऊं, अभी एज है, कमा सकते हैं, कुछ ला सकते हैं, कुछ तो है नहीं, क्या खाएंगे, कल क्या होगा, निश्चित नहीं भविष्य। बाबा कहता है बच्चे तुम पैसे के लिए, इस काले धन के लिए तुम बाहर जाओगे यज्ञ छोड़ करके? नहीं जाना, खिलाएगा बाबा अपने आप। तुम्हारे पास इतना अविनाशी धन मैंने दिया है, इस धन का दान करो। धन दिए धन ना कुटे, इस धन का दान करो। जो पक्के थी ना दादियां, बहुत पक्के बाबा के बच्चे थे, निश्चय था शिव बाबा को हम समर्पित हैं, उन्होंने कहा बाबा जो आज्ञा, बाबा जो कहेगा वही करेंगे, भले भूखे रहेंगे लेकिन बाहर नहीं जाएंगे, दुनिया में नहीं जाएंगे। तो थोड़ा समय परीक्षा आई आर्थिक रूप से, एक साल तक, और बाबा के वंडरफुल डायरेक्शन आते, उसी में ही परीक्षा की परीक्षाएं। इतनी सब ठंडी के बीच में, इतनी बरसात पड़ी तो ठंडी लगती है ना थोड़ी, बाहर भीग के आओ ठंडी लगेगी, उसमें बाबा का डायरेक्शन आ रहा है कि बच्चों को छाछ ढोडा खिलाना है, ठंडी में छाछ पिलाना है। वो ट्रांस में मैसेज संदेशी के द्वारा आता है, सबको बुखार हो रहा है, सर्दी हो रही है, उसमें छाछ कैसे पियेंगे? निश्चय की परीक्षा। लेकिन जो कहना माने, 15 दिन तक कोई चीज नहीं बनेगी, है ही नहीं भंडारे में तो क्या बनेगा, छाछ पिलाओ सबको। छाछ पी करके कई तंदुरुस्त हो गए, जिन्होंने मान लिया बाबा का कहना वो ठीक हो गए, और जिन्होंने डर के मारे नहीं पिया वो बेचारे भूखे मरे। जाओ कहीं भी जाओ, तो बाबा इतना एकदम दृढ़ता से, निश्चय से, भगवान के बच्चे हैं, पक्का कर रहा है इनको, कूट कूट करके कोई भी परीक्षा है पास होकर के दिखाना। और सचमुच उन दादियों ने उस परीक्षा को पास किया, तो आज देख लो क्या हो रहा है, उनकी पूजा हो रही है, कहाँ पहुंच गए। तो हम सब देखें कि कैसे समाधान स्वरूप बाबा रहे, एक निश्चय का बल था, एक भगवान हमारा साथी है, और हम भगवान के आगे समर्पित हैं, इसलिए कभी कोई बात में हलचल ना हो। परीक्षाएं तो आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन समाधान है बाबा की याद की शक्ति, योग का बल। बाबा अभी भी कहते हैं अंत समय में ऐसी सीन्स आएंगी जो सब साधन होंगे, खाने पीने के सब सामान भी हों, लेकिन होते हुए भी वो खा नहीं सकेंगे। आज बाढ़ आ जाती है, पानी के बीच में लोग हैं, पानी नहीं पी सकते, खड़े हैं पानी के अंदर लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसी परीक्षाएं आती हैं कई बार अचानक, जो सब साधन है लेकिन होते हुए भी उनको यूज नहीं किया जा सकता। ऐसे समय पर बाबा कहता, अगर तुम्हारा निश्चय टूट है, अटल है, तो मैं तुमको वतन में बुला के सुबह रस पिलाऊंगा। है ना निश्चय इतना, बाबा हमको कभी भूखा थोड़ी रखेगा। अगर हमने बाबा को प्यार से भोग खिलाया है, खिलाती है माताएं प्यार से कि नहीं खिलाती है? भोग लगाती हो सभी? प्यार से अगर बाबा को भोग खिलाया है तो भूखे रहेंगे क्या? कभी खिलाएगा अपने आप। किसी भी परिस्थितियां आएंगी कलयुग में, अंत समय में तो सब यही होने वाला है ना, तैयार है ना सब कि डर जाएंगे? कैसी भी समस्याएं हैं उनको पार कर लें, समाधान स्वरूप, क्योंकि परीक्षाएं आगे बढ़ने का साधन है। अगर स्कूल में विद्यार्थी सदा पढ़ता ही रहे तो आगे बढ़ेगा? पढ़ाई की परीक्षा होती है। हमारी दादी जी पता एक शब्द उच्चारण करती थी, मैं तो सदा परीक्षा हाल में अपने को देखती हूँ, सदा परीक्षा ही है, जिधर निकलो उधर कोई न कोई मेरा बैठा है मास्टर, कोई न कोई परीक्षा ले लेता है। तो किसी भी रूप से कोई भी बात, किसी भी विकार के अधीन होकर के कोई सामना करे और उसमें पास होकर के दिखा दें, वो है समाधान स्वरूप आत्माएं। तो आप सभी समाधान स्वरूप बन करके बाबा के घर से, इस तपस्या भट्टी से इतनी शक्ति भर के जाओ, कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आए, समस्याएं आए, मैं बाबा का बच्चा समाधान स्वरूप आत्मा हूं। केवल अपने संकल्पों को बहुत पॉजिटिव बनाओ। कई बार नेगेटिव संकल्प समस्याओं में और वृद्धि कर देते हैं, पता नहीं क्या होगा, ऐसा न हो जाए वैसा न हो जाए, हलचल में आ जाते हैं, डर जाते हैं, फिर उसके प्रति ख्यालात गलत गलत नेगेटिव चलने लगते हैं, और जिस प्रकार के विचार चलते हैं वही विचारों का रिटर्न सामने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा हम सब राजयोगी बाबा के बच्चों को, जिनके साथ स्वयं बाबा कंबाइंड है, जिनके साथ बाबा का वायदा है कि बच्चे तुम निश्चय से कहो 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ रहता है, निश्चय से कहो ये बाबा हमारा साथी है। अब जिसका साथी इतना ऊंचा सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ बाप है, अगर सचमुच दृढ़ता से इस पर निश्चय किया जाए, विचार किया जाए, उसको किसी भी परीक्षा में किसी भी समस्या में डरने की जरूरत है? पहाड़ भी क्यों ना आ जाए, बाबा हमको कहीं ना कहीं से क्रॉस करके ले जाएगा। अगर नहीं भी क्रॉस कर पाएंगे तो बाबा के साथ तो हैं, बाबा अपने आप रास्ता दे देगा। तो इसलिए बहुत दृढ़ता के साथ निश्चय के साथ साथी को सदा साथ रखो, समस्या का समाधान मिलता जाएगा, नहीं तो समस्याएं बहुत उलझाने वाली। जो कलयुग का अंतिम चरण है और अंतिम समय में जो सीन कभी नहीं देखी वही सीन आने वाली, जिनको कभी संभव ने असंभव समझते थे वो भी संभव हो सकती है। इसलिए किसी भी परीक्षा के अंदर किसी भी समस्या के अंदर नेगेटिव संकल्पों को आने की मार्जिन नहीं देना, कुछ भी हो जाए सब में कल्याण है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, संगम युग का समय कल्याणकारी है, हमारा बाबा कल्याणकारी है, मुझ आत्मा में कोई भी सीन कल्याण की मेरे सामने नहीं आ सकती। इतना दृढ़ता से इस ज्ञान को अंदर ले जाओ, ज्ञान को सिर्फ सुनो नहीं लेकिन ज्ञान का स्वरूप बन जाओ। बाबा चाहता है मेरे बच्चे ज्ञानी तो आत्माएं ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहें, नॉलेज फुल स्थिति कई प्रकार के विघ्नों को सहज पार करा देती है। और उसमें भी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में आप सब रहते हैं, विशेष हर विघ्न को विघ्नहर्ता के रूप में श्री गणेश की पूजा हम करते हैं, श्री कृष्ण को श्री गणेश को सबसे बुद्धिमान समझते हैं और उसकी हर कार्य के प्रारंभ में पूजा की जाती है। श्री गणेशाय नमः कह करके कोई भी कार्य शुरू करते हैं और उस पर पहले उसका चिन्ह बनाते हैं। हम सबको बाबा कहता है तुम शिव पुत्र श्री गणेश हो, है सब भाई लोग समझते हो, निश्चय है, ये है इतनी बुद्धि जजमेंट विजडम कि कोई भी बात को दूर से परख लिया जाए समझ लिया जाए। जैसे गणेश की लंबी सूंड दिखाई है, ये परखने की निशानी है। सूंड कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो भगवान ने कोई इसको सूंड लगा दी, लेकिन ये हमारी परख शक्ति, बुद्धिमान जो होता है वो आने वाली घटनाओं को दूर से परख सकता है, समझ सकता है, सूंघ करके भी पता चल जाए। तो दूर से भी जैसे कोई बात आने वाली कोई घटना घटने वाली है उसको पता चल जाता है और फिर मस्त रहता है, डरता नहीं है घबराता नहीं है, मस्ती की चाल है, कोई भी नीचे पैर के नीचे आ जाए कुचल देगा। पेट बड़ा है कोई बात का वर्णन चिंतन नहीं करता, समा लेता है। बड़े से बड़ी बात की सवारी चूहे की तरह उसको बना के सवारी करता, चूहे पर कोई बैठेगा इतना बड़ा? तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है कोई बड़े से बड़ी बात आ जाए उसका भी इतना सोच सोच करके बड़ा नहीं करना। कईयों की आदत होती है सोचने की, सोचते हैं तो सोच सोच करके वो तिल को ताड़ बना देते हैं, है छोटी सी बात सोचेंगे ऐसा हुआ भारी हो जाएंगे, टेंशन कर लेंगे और किसी के आगे अगर वर्णन कर लेंगे तो गंगा जमुना बहा देंगे, रोना शुरू कर देंगे। इतना सोचेंगे जो दूसरे को सुना करके उसको भी भारी कर देंगे। और बाबा क्या कहता है, नथिंग न्यू, कोई बात नई है ही नहीं ड्रामा के अंदर, कलप कलप के तुम बच्चे विजयी रतन हो, रोज सवेरे उठो और विजय का तिलक यहां लगा लो, मैं बाबा का विजयी बच्चा हूं। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कभी भी शक के संकल्प उत्पन्न नहीं करना, विजय होगी या नहीं होगी, क्या होगा, कैसे होगा। बाबा कहता ये संकल्प ही तुम्हारे लिए रुकावट है। अरे बाबा हमारा साथी है, टच करेगा, कैसे कैसे पार कराएगा। इसलिए विजय को साथ, संकल्प को साथ लेकर के चलो कि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ भी आएगा बाबा साथ है, टच करेगा, हो जाएगा। और सचमुच हो जाता है, करके देखेंगे ना। ऐसी कई बातें होती हैं, ऐसे सहज बाबा पार करा देता है, कुछ बड़ी बात नहीं, कोई बात असंभव है ही नहीं। तो ऐसी कई घटनाएं यज्ञ के सामने आई है, मैं तो शुरू से देख रहा हूं, लेकिन बाबा इतना निश्चिंत, इतना बेफिक्र। कभी कभी बाबा का वो दृश्य मुझे याद आता है, साकार में तो मैं बाबा के साथ यहां नहीं रहा, अव्यक्त होने के बाद तुरंत आया, लेकिन बाबा के अव्यक्त पार्ट में भी वो बेफिक्र बादशाही की वो जो स्टेज है वो कई बार हमने अनुभव की। दादी भी इतनी निश्चिंत रहती थी, लेकिन कभी भी योग का किला कमजोर होने नहीं दिया। परीक्षाएं आई, बहुत सारी परीक्षाएं आई, क्योंकि जब यज्ञ आगे बढ़ा, जब सेवाएं बढ़ी, तो सेवाओं के साथ साथ विघ्नों का आना भी स्वाभाविक। कई प्रकार की परिस्थितियां आने लगी, इनकम टैक्स की भी नजर गई, दूसरों लोगों की नजर जाती है कि ऐसा क्या, कहां से आता है पैसा, कहां से आता है लोग, क्या कहां से आता है इतना सब। कई प्रकार की परीक्षाएं आती गई और दादियां इतनी बेफिक्र, इतनी निश्चिंत, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। बाबा के साथ के आधार से यज्ञ को इतना, अपने आप के संकल्पों को इतना लाइट रखा, कभी भारीपन नहीं हुआ। दादी को कभी कभी कहते थे, दादी ऐसा ऐसा हुआ, आपको नींद आई, क्या कहती थी दादी पता है क्या कहते थे? अरे मैं तो बाबा की गोदी में जब बिस्तर पर जाती हूँ, बाबा कहती बाबा गुड नाइट, और मैं एक मिनट में सो जाती, एक मिनट भी नहीं लगता है। मैं क्यों सोचूं, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, वो बैठा है, मैं थोड़ी बड़ी हूं, बड़ा बैठा है ना संस्था की हेड, और वो इतना ऐसा जवाब दे, बाबा बैठा है ना, मैं क्यों चिंता करूं। बाबा को कोई देखता है क्या? उसको तो देख ही नहीं रहा है, करान करावा नार बाबा है। और दादियों को इतना फेथ, इतना निश्चय, कभी भी छोटी मोटी बातें क्या, बड़ी बड़ी बातें आई यज्ञ पर, बिल्कुल बेफिक्र, कोई बात नहीं, बाबा है साथ, उसका यज्ञ है, उसका कार्य है। एक बार क्या हुआ कि कई बातें यज्ञ के अंदर ऐसी छोटी मोटी आती हैं, बहुत सारी बातें यहां से, आबू से भी, दूसरी जगह से, कभी जब आगे बढ़ती ना, कोई ना कोई पेपर भी आता है अचानक, तो बहुत सारी बातें आ रही थी। तो बाबा को सुनाने के लिए एक बार बाबा को बुलाया, बाबा को सुनाऊं तो ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ओम शांति भवन उस समय बन के तैयार हुआ था, तो ओम शांति भवन बनने में भी बहुत परीक्षाएं आई, बहुत समस्याएं आई, एक नहीं आई, गवर्नमेंट की इतनी सारी बातें, यज्ञ में इतना कोई पैसा भी नहीं, कोई इतने संपर्क नहीं। शुरुआत तो कर दी, दादी ने जमीन मिल गई, बनाओ बनाओ बनेंगे। जब बनने लगा तो कलेक्टर ऐसा आया जो कहना, एक पत्थर नहीं तोड़ सकते हो, एक पत्थर नहीं तोड़ना, यहाँ पर पहाड़ी है ना, पत्थर नहीं तोड़ने की छुट्टी। अब पत्थर नहीं तोड़ेंगे तो कैसे बनाए, सारा तो पत्थर ही था। ड्रामा अनुसार जितना तोड़ पाए उसे तोड़ करके उसी पत्थर को दिवाली बनवा ली, और अगर तोड़ देते ना, जो दाद ज्यादा छुट्टी दे देता, तो ये जो ताज जैसा बना है ना इतना सुंदर ओम शांति भवन, वो नीचे चला जाता, उसमें तीन चार फ्लोर बन गए नीचे से ऊपर तक। हर बात में कल्याण है, उसने रुकावट डाली, दादी ने कहा कोई बात नहीं, रोक दो यहीं पर, जो टूट गया है उसी के ऊपर बना दो, कोई आर्किटेक्ट, कोई इंजीनियर, कोई बाहर का नहीं। हम सब मधुबन निवासी, शाम को 3 बजे 4 बजे वहां चाय रख देती थी, चलो कार सेवा करेंगे। दादी आगे आगे पहुंच गई और हम सब पीछे से गए और सबको चाय पिलाई और पकौड़ा खिलाए और सब उठाओ पत्थर। 3 घंटा 4 घंटा सब ने पत्थर तोड़े और उठाए। यही एक बिल्डिंग ऐसी बनी, 83 की बात है, 82 की बिल्डिंग बन रही थी, और दादी ने डेट अनाउंस कर दिया कि इस डेट को इसका उद्घाटन होगा। दिसंबर में दिवाले नहीं बनी है और फरवरी में उद्घाटन होना है। और उद्घाटन करने के लिए यूनाइटेड नेशन का असिस्टेंट डायरेक्टर सेक्रेटरी जनरल आने वाला है, उसका नाम हुआ। अब आप समझ सकते हो इतनी प्रोपोगंडा, इतना सब तैयारी, उसके उद्घाटन में ये होगा ये होगा ये होगा, और दीवार नहीं बनी पीछे की, कैसे बनेगी, क्या होगा। दादी कहती सब बैठे हैं ना मधुबन वाले, चलो कैंची बनाने वाले आए मधुबन समर्पित भाई, उसको रंग करने वाले, उसको टीन शीट डालने वाले, बिजली वाले, एक नाइट में फ्लोरिंग किया नीचे की, नाइट में लग गए सबके सब, सब ने टाइल्स उठाई और लगाने लगे, एक नाइट में लगा दिया। कितनी जल्दी, मैं समझता हूँ एक मास के अंदर सारी बिल्डिंग खड़ी कर दिया। पहले धीरे धीरे काम चला था और डेट मिलते ही इतनी स्पीड बढ़ी जो एक डेढ़ महीने के अंदर 8 फरवरी को उसका उद्घाटन हो गया 83 में। माना इतना एक दृढ़ता थी, इतना निश्चय था, इतना बाबा के प्रति श्रद्धा थी कि बाबा का कार्य है, बच्चे बाबा के करण करावनहार, बाबा कराएगा इनसे। कहाँ से पैसा आया, क्या हुआ, और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है यहाँ मधुबन में, अपने क्वार्टर्स मकान के अंदर 500 लोग नहीं रह सकते, और दादी जी ने कहा हॉल भरना चाहिए, हॉल में 3000 लोग बैठते हैं, हॉल भरना चाहिए, इतने बड़े बड़े वीआईपी आ रहे हैं, सब ब्राह्मणों को छुट्टी दे दो, कैसे रहेंगे दादी, आबू के सभी होटल ले लो। एक भी ऐसा होटल नहीं था जिसको हम लोगों ने न ली, होटल धर्मशाला जो थी यहां सब बुक कर लिया। इतना गंदा बिस्तर, इतना गंदा स्थान, जब हम लोग जाते थे दादी ने कहा सब मधुबन वाले जाओ, जहां गंदगी है जहां सफाई नहीं उनका सब साफ करो, गर्म पानी की व्यवस्था करो, फरवरी में बहुत ठंडी है, आने वालों को तकलीफ ना हो, लेकिन एक भी होटल बाहर वालों को नहीं मिले, सब रब्बी के का होटल है, सब खरीद लिया। जाने वाले गए और उनकी बहुत प्यार से सेवा हुई, सब होटलों में रहे, 3000 लोग आ गए, और पहली कॉन्फ्रेंस क्या धूमधाम से, ऐसा लगा अब बाबा प्रत्यक्ष हो गया, बस अखबारों में आ गया, इधर चारों तरफ से हाक जय जयकार जैसे हो गई, इतने बड़े बड़े लोग आए, विदेश का सारा सारा यज्ञ का परिवर्तन हुआ, इतना चेंजेज आए। मैं आपको बताऊं जो हम लोग 11 साल तक धोबी घाट करना, अपने मैनुअल धोबी घाट, मशीनें नहीं थी, रोटी बनाते थे चूल्हों पर लकड़ियों पर, उसके बाद तुरंत स्टीम आ गई, बिल्कुल ओम शांति भवन ने वो वरदान दिया यज्ञ को, सब साइंस के साधन सब उपलब्धियां उस भवन बनने के साथ साथ शुरू, कोई मशीनरी ऐसी मशीनरी आई जो हम लोगों का धोबी घाट छूटा, हम लोग गर्म पानी जो करते थे रनिंग वाटर हो गया, घर घर में कमरे कमरे में पानी पहुंच गया, कैसे बाबा का वो चमत्कार हुआ। दीदी अव्यक्त हुई इसी जुलाई मास की 28 तारीख, परसों 28 तारीख आ रही है, 28 तारीख को दीदी ने शरीर छोड़ा 83 में। दीदी मनमोहिनी जो बाबा की बहुत अनन्य गोपिका थी, उसका नाम ही गोपी था, और उस गोपिका ने जो यज्ञ के अंदर नियम और मर्यादाएं इतनी दृढ़ता के साथ पालन की, क्या मजाल है कोई क्लास में ना आए, क्या मजाल है कोई अमृत वेला मिस करे, इतनी दृढ़ता के साथ हम लोग आए, छोटे छोटे अलबेले तो थे, लेकिन वो पावर से प्यार और प्रेम की पालना दे करके हम सबको बांध दिया अपने अंदर, एक एक चीज पर नजर रखी, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, पूरी दिनचर्या पूरा ध्यान, और एक पर कोई भी अगर मिस कर दे तो उसकी खैर नहीं है, बुलाएगी, अकेले में बिठाएगी, पूछेगी तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम यहां किस लिए आए हो, सेवा करने के लिए, सेवा तो नौकर भी करते हैं, मजदूर भी करते हैं, वो भी पघाल लेते हैं, तुम पघाल लोगे क्या, ऐसे दृढ़ता से प्यार से स्नेह से समझा करके उसको पक्का कर देते थे। तो कई सब कई प्रकार की परीक्षाओं को इतना सरल रीति से पार कराया दादियों ने दीदी ने, तो जब बाबा आए, जब ये ओम शांति भवन बना, तो अव्यक्त बाबा को सब सुनाने के लिए कि ऐसी ऐसी परीक्षाएं आ रही, ये बातें हो रही हैं, तो बाबा पहले तो आके मुरली चलाई बड़ी अच्छी, 15-20 मिनट मुरली चली, हम भी सामने सब बैठे थे, हम तो उस समय टाइप करना शुरू कर दिया था, उस दिन मैंने कहा मैं सामने टाइप लेकर के जाऊंगा, उस समय कंप्यूटर नहीं था, टाइप लेकर के टाइपराइटर पर ही मैं टाइप कर रहा था, डायरेक्ट कर रहा था, बाबा बेटा बोला मैं टाइप कर रहा हूं, तो बाबा इशारा करता है कि ये टाइप करना बंद कर दो, टेप करना बंद कर दो। माइक तो बंद नहीं कर सकते, माइक बंद करें तो आवाज नहीं जाएगी, इतने सब बैठे थे। सबको बोला लिखना बंद कर दो, डायरी बंद कर दो। पता नहीं क्या हो गया, बाबा ऐसे कभी बोलता नहीं था। और बाबा ऐसे दृष्टि देते 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 बोला अच्छा, सबने बंद किया, ऐसे देखा, बोला अच्छा, बड़ों को बोला, जो हमारे मुख्य बड़े भाई बहने दादियां उनको बोला इधर आओ, सब स्टेज पर बुलाया। और स्टेज पर बुला के बोलता अच्छा क्या क्या हो रहा है सुनाओ, क्यों संकल्प चल रहे हैं, क्या संकल्प चल रहे हैं। सबने थोड़ी थोड़ी बातें जो थी सुनाई, और बाबा को क्या सुनाएंगे ज्यादा, तो सुनाई तो बाबा बड़ा मुस्कुराया, बहुत मुस्कुराते बोलता है सवेरा आने वाला उसको कोई रोक सकता है, इस 24 घंटे में भी सवेरा आने वाला होता उसको कोई रोक सकता है, कितने बादल आ जाएं रोशनी तो हो जाएगी ना। तो बाबा ने ऐसे निश्चिंत किया बच्चे, कोई बात की चिंता नहीं करो, कोई सोचने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा वायुमंडल बनाओ, बहुत शक्तिशाली योग का वायुमंडल बनाओ, ये विघ्न सब खत्म हो जाएंगे, ये बातें सब खत्म हो जाएंगी। सतयुग को तो रोक नहीं सकता कोई भी, कितनी भी पहाड़ जैसी परीक्षा आ जाए, सतयुग को तो लाना ही है, वो तो आने वाला ही है, दिन तो आना ही है। और जब वो आना ही है तो तुम बीच की बातों में अटक क्यों जा रहे हो, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। कहीं पर भी मंजिल पर जब पहुंचने का लक्ष्य होता है तो बीच में कितनी भी रुकावटें आए वो पार करता जाता, उनकी परवाह नहीं करता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है बच्चे बेफिक्र बेपरवाह बादशाह बनो, ज्यादा संकल्प चला चला करके अपने माथे को बहुत भारी नहीं करो, डबल लाइट रहो, जितनी बुद्धि स्वच्छ हल्की होगी उतना बाबा के पास पहुंचेगी और बाबा की टचिंग को कैच कर सकेगी। इस समय के अनुसार अपनी बुद्धि को बहुत लाइट रखने की जरूरत है, लाइट रहो बस, सब अच्छा ही होने वाला है। अगर भारी होगी और बाबा कुछ टच करना चाहेगा, एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी कि जब बच्चे उलझ जाते हैं मून जाते हैं तो मैं बच्चों को गाइड करना चाहता हूं, लेकिन बच्चों ने अपनी बुद्धि को इतना इंगेज किया हुआ होता है जो बाबा की टचिंग उन तक पहुंचती नहीं है। इसे बात करूं, उसको सुनाऊं, वो हल देगा, वो मदद करेगा, सब देहधारियों की याद आती है, बाबा की याद बाद में आती है, कैसे मैं उनको टच करूं। तो मैं हलो हलो करता हूं, उनको रिसीवर उतार के रख दिया तो मैं क्या करूं। ध्यान रखना बाबा की टचिंग को कैच करो, और टचिंग कैच तभी हो सकती है जब ये बुद्धि बहुत स्वच्छ और क्लीन हो, कोई भी इस पर टेंशन नहीं लो, प्रश्नों का उलझन में मन को उलझाओ नहीं, शांति से बैठ जाओ। तीन गोली हमको दादी रोज खिलाती है, जानकी दादी क्लास में आती थी पहले, तीन गोली रोज सवेरे सवेरे खा लो, गोली तो खानी पड़ती ना दवाई की, एक धैर्यता की, बहुत धीरज, दूसरा शांति, तीसरा प्रेम। अगर ये तीन गोलियां रोज खाई ना धीरज, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, क्यों क्या मैं उलझना नहीं, माथा नहीं खराब करना, अपना भी दूसरे का भी। मैं थोड़ी सी बात होगी, दीदी ऐसे हो गया, दादी ऐसे हो गया, भाई जी ऐसे हो गया, फोन करेंगे, अपना भी टाइम वेस्ट, दूसरों का भी टाइम वेस्ट, सब ठीक हो जाएगा। अरे बाबा बैठा है, बाबा को मैंने जीवन दी है, बाबा के आगे हमने अपने को अर्पित किया है, बाबा हमारा साथी बना है, संगम पर हमारा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, ये बात आई है खत्म हो जाएगी। तो चाहे शरीर की पेपर आ जाए, चाहे संबंधों से पेपर आ जाए, चाहे आर्थिक रूप से पेपर आ जाए, चाहे प्रकृति का आ जाए, प्रकृति के पेपर में बाबा इतना पास कराता है, ध्यान खिंचवाता है कि अच्छा कोई बात होती है बच्चे ध्यान रखो, अपने पास इतना सामान तो रखो जो 5-6 महीना कम से कम आराम से खा सको। दादी जी हमेशा हर साल एक डायरेक्शन लिखवाती थी टीचर्स को, मैं लिखता था हर साल, कम से कम हर चीज, यहां तक भी मुझे पता है दादी कहती थी पानी का भी प्रबंध घर में होना चाहिए। विदेश के अंदर कोई भी बोरिंग नहीं कराता था, जब मैं इस बार गया था विदेश में अमेरिका की तरफ तो मैंने कहा ये बोरिंग आप लोगों ने कराई, कहते दादी ने डायरेक्शन दिया था। और कई बार ऐसी इमरजेंसी होती है पानी नहीं आता, गवर्नमेंट का पानी नहीं मिलता है और ये बोरिंग काम करती है, हमारे घर में कभी पानी की कुट नहीं होती अपने घर में, दादी ने एक एक चीज का, यहां तक कहती थी माचिस जरूर रखना, अगरबत्ती रखो, मोमबत्ती रखो, मिट्टी का तेल रखो, अपने घर में सब साधन 6 महीने के रखो। अचानक कुछ होगा ना, अभी दार्जिलिंग का समाचार शायद सुना होगा, दार्जिलिंग के कल एक भाई आया मेरे पास, कहता है 2 महीने से लेकर के ना सब्जी है, ना आटा है, ना दाल है, ना कोई काम है, इतना हंगामा चारों तरफ से है। और उसमें भी कहता मेरे पास 40 स्टूडेंट आते थे, हमने कहा आप लोग छोड़ के नीचे आ जाओ ना, नीचे तो अपना बड़ा सेंटर है दार्जिलिंग के नीचे सिलीगुड़ी में। तो कहता है भाई जी छोड़ू क्या, वो 40 के बजाय 150 लोग आते हैं क्लास में, 40 पहले आते थे, अभी 150 आते, वो सब फ्री हैं, जो संबंध संपर्क में आए थे चलो बाबा की मुरली सुन के आते हैं, चलो योग करके आते हैं, सब आ जाते हैं, तो उनकी पालना तो करनी पड़ेगी। हमने आप ऊपर से नीचे आए कैसे, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई गाड़ी, कहता पैदल चल के आया हूं, 24 घंटे ऊपर से पैदल चल के नीचे आया, वहां से गाड़ी पकड़ी, और मैं मधुबन की भट्टी मिस नहीं करता हूं तो इसलिए आया हूं, मुझे मुरलियां दे दो, मुरली मिल ही नहीं रही, न ईमेल में मुरली जा रही, न इंटरनेट है, लाइट नहीं है तो इंटरनेट क्या चलेगा, इतना जबरदस्त इस समय। अब वो बहन कहती है भाई जी मैंने तो 3 मास का फुल स्टॉक रखा हुआ था, इसलिए सब अपने घर में है, और हम सबको जो आ जाते हैं उनको भी खिलाते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, और अभी स्टूडेंट नए नए आने लगे, देखते हैं दीदी के पास ये चीज है तो अपने घर में होती तो ले आते, कोई कमी नहीं है, सब चीजें भरपूर है। तो बाबा अपने बच्चों कहता है ये सब परिस्थितियां विकराल आने वाली हैं और बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली, इसलिए अपने आप तैयार रहो, एवर रेडी रहो, अचानक तो बहुत कुछ होगा, समस्याओं में उलझ नहीं जाना, ऐसा हुआ वैसा हुआ क्या होगा अब क्या होगा। बाबा कहता जो क्या क्या करता है वो तो नाम नहीं लेता हूं, ध्यान रखो मुझे क्या क्यों कैसे के प्रश्नों में उलझना नहीं है, फुल स्टॉप, सब अच्छा होने वाला है। कलयुग जाएगा तो ऐसे सहज नहीं जाएगा, हिला के जाएगा, बहुत शक्तिशाली है ना, इसलिए हिलना नहीं है, पास हो करके जाना है बाबा के साथ से, निश्चय से, कि कोई भी परीक्षाएं हमारी लगन को बढ़ाने के लिए आती हैं, कम करने के लिए नहीं आती। परीक्षा आ गई अब क्या करूं, थोड़ी सी बात हलचल की हो गई, वातावरण खराब होने लगा, नहीं जाना क्लास में, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, डर जाते हो रही, अरे लगन बढ़ जानी चाहिए, नहीं नहीं होने दो जो हो रहा है, हमको तो जाना ही है। तो लगन की अग्नि अगर तेज है तो विघ्न और समस्याएं ऐसे समाधान हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, है ही नहीं कोई भी। लगन कम नहीं होनी चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए, और एक ध्यान रखना, जिस स्थान पर आप रहते हो उस स्थान को योग का घेराव डालो, किला बना दो। जैसे पहले जमाने में दुश्मन जब अटैक करने वाले थे तो राजा लोग किले में छिप जाते थे, यहाँ राजस्थान में बहुत सारे किले बने हुए हैं, अभी तो टूट टूट गए हैं, लेकिन किलों में राजाएं रहते थे और किले को कोई अंदर घुस नहीं सकता, ऐसी दीवार होती ऊंची और ऊपर से सब ऐसे बने होते झरोखे जहां से सारा दिखाई देता है कि कौन किधर से घुस रहा है, दुश्मन किधर से आ रहा है, और वहां से ही गोली चलाते जिससे उसको मार दे। बाबा कहता है बच्चे तुम बच्चों का योग का किला होना चाहिए, और उस किले के अंदर हो तो आपकी सुरक्षा है, कैसा भी दुश्मन कहीं से भी आए अटैक करे तो आपको पता चल जाए कि इस तरफ से आ रहा है, किसी भी विकार का आ सकता है, काम का भी है, क्रोध का भी है, लोभ का भी है, मोह का भी है, अहंकार का भी है, परिस्थितियों में भी कई प्रकार की परिस्थितियां हैं, शारीरिक हैं, मानसिक हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, पारिवारिक हैं, प्रकृति की हैं, सरकार की हैं, बहुत सारी हैं, भटकती हुई आत्माओं की हैं, इस सब प्रकार की परिस्थितियां समस्याएं अगर कोई भी आ जाए तो क्या मैं इतना आत्मा शक्तिशाली हूं, इतनी समर्थ स्थिति में हूं जो उसको सहज पार करके निकल जाऊं, कोई कुछ भी मेरा बिगाड़ ना सके, बाबा के साथ से लगन की अग्नि से एक तो प्रवेश ही न कर सके अंदर, क्योंकि किला बना हुआ है। अगर किसी भी स्थान पर व्यक्त और व्यर्थ बातें चलती हैं वो स्थान सुरक्षित नहीं है, चाहे आपका घर है चाहे सेंटर है, जहां पर व्यक्त और व्यर्थ बातों की चर्चा हो रही है, पर चर्चा हो रही है जिसकी जरूरत नहीं है, आध्यात्मिक वातावरण के बीच में अगर कोई साधारणता की बातें चल रही लौकिकता की, तो वही विघ्न है और कोई विघ्न नहीं है, वही विघ्नों का आवाहन करता है। इसलिए जिस स्थान पर योगी आत्माएं रहती हैं उस स्थान पर कोई भी लौकिक साधारण व्यक्त बातें नहीं होनी चाहिए। इस पर अंडरलाइन कर लो, बस समाधान स्वरूप बन जाओगे, आएंगी नहीं समस्या। अगर आ भी गई तो आपको हल दिखाई देगा, ऐसे पार हो जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे, ये रास्ता है। और अगर जरा भी साधारणता है, व्यक्त बातें हैं, तो कहीं न कहीं से वो माया आएगी, परेशान करेगी, नाम बदनाम करेगी, खुद का भी करेगी और यज्ञ को भी बदनाम कर देगी। इसलिए बहुत ध्यान रखना, हम सब यज्ञ रक्षक बच्चे बाबा के हैं। यज्ञ में कोई भी आंच ना आए, किसी भी प्रकार की हमारी कमी कमजोरी यज्ञ के ऊपर ना आ जाए, इसका ध्यान रखो। इसलिए जितना आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे, मर्यादाओं के अंदर रहेंगे, योग का किला बनाएंगे, लगन की अग्नि को बढ़ाएंगे, रूहानियत में रहेंगे, उतना आप समाधान स्वरूप बन जाएंगे, समस्याएं आएंगी पार हो जाएंगे। लगेगा तो खेल है, खेलते हैं ना खिलाड़ी लोग, खेलने में कितना आनंद लेते हैं। सागर के किनारे आप जाओ, जो नहाने वाले होते हैं, रोज तैरने वाले होते हैं, वो उसकी लहरों का आनंद लेते हैं। यहाँ पहाड़ पर रहने वाले भी, पहाड़ पर इतनी बरसात पड़ रही तो आप झरने के आगे जाओ तो वहां नहा रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं उसका, जानते हैं कैसे इस प्रकृति के अंदर, इसके अंदर हमको सेफ रहना है। तो हम सभी भी उस नॉलेजफुल बन करके हर परिस्थिति को समझ करके बहुत अच्छी स्वस्थिति रखें और पार कर लें, और शांति से, धैर्यता से, प्रेम की स्थिति से बाबा को इतना प्यार से आवाहन कर लो जो आपको ऐसे पहुंच करके आपको मदद करते। एक सेकंड में लगता है बाबा को आने में, कितनी देर लगती है? अगर आप बाबा को बुलाओ तो कितनी देर में आएगा? सेकंड भी नहीं लगे, सेकंड तो यहाँ का समय है। लेकिन कहता है दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से, ऊपर ऊपर से कहोगे तो नहीं आएगा। पहले किसी दूसरे को याद करके फिर उसको याद करोगे तो बिल्कुल भाग जाएगा, किनारा कर लेगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना कि कभी भी किसी देहधारी के साथ पहला वो अपने आप टच करेगा, इसको साथी बनाओ, ये मदद करेगा, वो टच करे ना, हम डायरेक्ट क्यों जाएं उसके पास? तो उसकी टचिंग आनी चाहिए कि कैसे करें, क्या करें, अपने आप बाबा टच कर देगा। लेकिन बुद्धि की लाइन बहुत साफ स्वच्छ निर्मल चाहिए, इतना शांत मन की स्थिति रखो, किसी भी प्रकार के ये रेखाएं जो है ना, ये तीन चार बल पड़ जाते हैं ना इधर चेहरे पर, मस्तक पर, ब्राह्मण आत्माओं के चेहरे पर टेंशन की रेखाएं नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री। किसी भी प्रकार की बातें हो, कितनी भी बड़ी बातें हो, सब सहज होने वाले, सब पार हो जाएंगे, भगवान हमारा साथी है। संगम युग पर हमने उसको अपना साथी बनाया है, जो सबका सहारा है, सबका रक्षक है, सबका रखवाला है, सबका मालिक है, वो हमारा बाप है। है निश्चय सब माताओं को है इतना निश्चय? इसी निश्चय के आधार चलते है ना, थोड़ी सी बात आ जाएगी, हाय क्या हो गया, अब क्या होगा, ऐसा नहीं होता है ना, होता है सोचना, विचार करना। और यहां से बाबा को ऐसा साथी बना के जो कंबाइंड रहो, बिंदु बिंदु के साथ कंबाइंड रहती है, उसकी प्योर किरणें, पवित्र किरणें, पवित्र किरणों के साथ कंबाइंड रहती है। आत्मा जितनी प्योर शुद्ध बनती जाती है, बाबा की शक्तियां उसके साथ कंबाइंड हो जाती है। कहता है ना कंबाइंड स्वरूप में शिव शक्ति बन करके रहो, पांडव पति के साथ पांडव कंबाइंड रहो। कैसे कंबाइंड रहेंगे स्थूल में शरीर के साथ? तो उसको शरीर नहीं कंबाइंड क्या होगा? लेकिन अगर हम पवित्र शुद्ध ओरा में रहते हैं, अच्छे विचार करते हैं, बहुत पवित्र आभा मंडल है, तो बाबा की वो पवित्रता की, संपूर्ण पवित्रता की लाइट इसके साथ कंबाइंड हो जाती। और ये लाइट कंबाइंड है तो कितनी भी भटकती हुई इच्छा वाली आत्मा, कई कामनाएं हैं उनकी रही हुई, अचानक शरीर छूटते हैं आत्माओं के तो उनकी कामनाएं रह जाती हैं, और जहां से उनकी पूर्ति होती वहां वो प्रवेश कर जाती है, उनको फिर परेशान करती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम अपना रक्षा कवच बनाओ ना, खुद अपने सुरक्षा के अंदर घेरे में रहो, वो आत्माएं आएंगी नहीं, टच भी नहीं करेंगी, भाग जाएंगी। मैं एक बार बताऊं, बताता नहीं हूं क्लास में आपको, इसलिए बता रहा हूं कि एक बार मेरे लौकिक दादाजी थे, वो हमसे बहुत चिढ़ते थे। चिढ़ते इसलिए थे कि वो चाहते नहीं थे ये ज्ञान में चले, पूरा परिवार ज्ञान में चलता था। और वो कुमार थे, शुरू से ही तंत्र मंत्र झाड़ फूक सब कुछ करते थे। उनके आगे बैठते ही किसी में कोई इविल सोल होगी ना, तो फट से उसके में आकर के उनके आगे झुक जाएगी, निकाल देते थे। बहुत भीड़ लगती थी मंदिर में, तो उन्होंने मुझे बचपन से ही अपने साथ रखा था। और वो बहुत ध्यान रखते थे कि ये कहीं ब्रह्मा कुमारी में न चला जाए। पिताजी तो पहले आ गए, मैं 4 साल का था तो ज्ञान में आ गए। हर साल मधुबन में आते थे, मम्मा को बुलाया, मम्मा गांव में आ गई। बहुत नजदीक थे बाबा के, दादी मम्मा के, तो उनको ये रहता था कि ये गया तो फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए बहुत ध्यान रखते थे, कहीं नहीं जाने दिया। बाबा कानपुर गए, मैं नहीं गया। मम्मा घर में आई, मुझे पता नहीं क्या किया, मैं नहीं देखा, याद नहीं है। 4 साल का था, याद भी नहीं है। लेकिन अचानक जब मैं, बहन गई थी मुझे लौकिक घर में, तो कहने लगी चलो तुमको मैं मधुबन घुमा लाती हूँ, स्कूल की छुट्टी है, दादा से छुट्टी ले आओ। तो मैं गया दादा को, ऐसे ही बोला दादा मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं 1 महीने की छुट्टी है। कोई संबंध तो रखे नहीं थे, पिताजी ने सब संबंध तोड़ दिए, कोई मामा मामी मासी क्या होते मुझे पता नहीं, किसी के पास गई नहीं कभी लौकिक में भी। तो मैंने जब बोला तो उनके मुख से निकल गया भले घूम क्या 1 महीने, उनको क्या पता है जाएगा तो आएगा ही नहीं। तो जब यहां मैं आया 1 महीने की छुट्टी लेकर के यहां रहने लगा, तो रहा तो मुझे इतना प्यारा घर मिल गया, इतना परिवार अच्छा मिल गया, सब भाई बहनों का प्यार में, ज्ञान यान नहीं था कुछ भी, मुरली तो 1 दिन भी नहीं सुनी थी। तो यहां आकर के संघ का रंग लगा, और हमने दादी को बोला, दीदी ने देखा कि ये लड़का तो अच्छा है, रह सकता है, उनकी भी तरफ से प्रेरणा मिली और मुझे भी आया कि क्या दुनिया में रखा है, मैं भी यहीं रह जाऊं, मैं भी यहां सेवा करूं। तो दादी ने मेरा हिस्ट्री पूछा, तो मैंने बोला मेरे पिताजी 3 भाई हैं और 2 कुमार हैं, मैं अपने परिवार में 2 ही भाई बहन हैं। बोले 2 ही हो, 1 बहन 1 भाई, बहन सेंटर पर समर्पित, तुमको छुट्टी कैसे मिलेगी, तो ये तो संभव नहीं। दीदी ने पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए बोला इससे पूछो ना, दादी आपका विचार है तो मैं यहां रहना चाहता हूं। दादी कहती कैसे रहेगा, अभी तो बहुत छोटा है, मैं 15 साल का था। तो नहीं नहीं अभी 3-4 साल पढ़ लो दादी, विनाश होने वाला है, मुझे छुट्टी दे दो। तो कहती विनाश तो होगा लेकिन अभी थोड़ा और पढ़ लो, बड़े हो जाओ, फिर पिताजी की चिट्ठी लेके आना, तुमको छुट्टी मिलना मुश्किल है, क्योंकि परिवार में जो इकलौता बेटा होता है तो ऐसे घर में छोड़ते नहीं है। तो ऐसे बहुत समझाया मुझे, फिर भी कहा 1 साल अच्छा जाओ पढ़ लो जाकर। तो मैं पढ़ने के लक्ष्य से चलो 1 साल जाता हूँ, पढ़ करके चिट्ठी लेके आ जाऊंगा, हाई स्कूल कम से कम कर लूं। तो मैं जब गया स्कूल में पढ़ने, तो उस समय ये बांग्लादेश वाली लड़ाई चढ़ गई, ये जो बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने लड़ाई किया ना, उसमें बांग्लादेश को अलग कराया 71 में, और वो इतनी जबरदस्त लड़ाई चली, तो शाम के समय 6 बजे ब्लैकआउट हो जाता था। स्कूल में मैं पढ़ता था, वहीं रहता था, तो जब ब्लैकआउट होता था तो ऐसा लगता था अभी बस बम गिरेगा, विनाश होगा, कुछ न कुछ होगा। बाबा तो कहता था 76 में विनाश हो जाएगा, तो ऐसा पक्का हो गया कि बिना शुरू हो गया। तो बड़ी मुश्किल से वो हाई स्कूल मेरी पूरी हुई। जिस दिन लास्ट पेपर हुआ उसी दिन पिताजी को बोला मुझे अब जाना है मधुबन, उन्होंने कहा भले जाओ, खुशी से जाओ, चिट्ठी दे दिया मुझे। अब चिट्ठी लेकर के मैं मधुबन में आया, तो दादी मुझे देख के कहती है तुमको छुट्टी मिल गई। मैं हाँ दादी मैं छुट्टी लेके आ गया। चिट्ठी देखी, खुश हो गई, कहती अच्छा अच्छा भले रहो, मैंने को रख लिया। अब वो दादाजी को आग लगी, क्या करूं मैं। अब उनके पास सब शक्तियां थी, सब प्रकार की शक्तियां थी, मैं इसलिए बात बता रहा हूं, वो जिसको चाहे वो अपने बस में कर लें। तो उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना वहां से रोक किया। मैं यहां रहा 5-6 साल, उसके बाद उनकी और शक्तियां बढ़ने लगी, और मुझे यहां पर कोई अनुभव नहीं हो उसका कि मुझे कुछ हुआ होगा। उन्होंने माता जी को अपने बस किया, और मां को बस में करके उनको कुछ खिला दिया, और खिलाने के बाद बस उसके अंदर से वही आने लगा कि राजू को बुला दो, और कुछ नहीं बोले। सबके घरों में इधर उधर कहीं घर से निकलती नहीं थी, और उसके बाद उसने रट लगाना शुरू कर दिया, राजू को बुला दो, राजू को बुला दो, और कुछ बोले नहीं। अब जब तक वहां से मुझे यहां मैसेज आया, उस समय सब फोन में साधन तो थे नहीं, तब तक उसने शरीर छोड़ दिया। और जब यहां मुझे मैसेज मिला तो दादी देख करके मेरे को कहती, अब तेरे पर परीक्षा शुरू हुई, तुम तो पास है अभी, लेकिन अब जाएगा तो तेरे लिए बहुत बंधन आएगा, लेकिन जाओ बाबा साथ है, साथ रखना बाबा को। मैं गया बाबा को साथ लेकर के, मेरे लिए तो बहुत सारी प्लान थी वहां, शादी की प्लान थी, लड़की भी रखी हुई थी, सब बहुत सारी बहुत तैयारियां थी, सब तैयारियां थी। और उसके बीच में पहुंचा जा करके, और वो भी था कि अगर नहीं होगा तो इससे तंत्र मंत्र भी होगा, सब था। लेकिन जब मैं गया भोग लगाने के लिए तो पहले पहले संदेशी एक मेरे साथ थी, बहन साथ थी, चाचा जी तो ज्ञान में थे ही पक्के। तो मैंने पहले दिन ही भोग लगाने के लिए उसको बिठा दिया, और भोग में वो जब ट्रांस में गई बहन, तो बाबा ने ऊपर वतन में उसको बड़े मोटे मोटे रस्से दिखा दिए और मुझे खड़ा किया और रस्सा बांधा जा रहा है इसे। और जो सीन उसको दिखाई वही सीन चाचा जी को भी दिखाई साथ साथ, क्योंकि अकेले ही बोलेगी तो शायद न माने कोई, इसलिए दो जगह होगा तो कंपेयर हो जाएगा। तो चाचा जी तो ज्ञान में थे, कुमार थे। तो जब संदेशी ने आकर के सुनाया कि बाबा कह रहा है बच्चे को इसी स्थान पर केवल 3 दिन की छुट्टी है, और जहां पर संस्कार हुआ है मां का वहां नहीं जाना है, इस घर के वातावरण में अभी बहुत नेगेटिविटी है, यहां 3 दिन रह सकते, 4th दिन नहीं रहना, और मैं गया था 13-14 दिन की छुट्टी लेके। बाबा का डायरेक्शन ऐसा आ रहा है। चाचा जी कहते बाबा यही कह रहा है, बाबा यही कह रहा है, तुमको भी यही बोला, हमको भी यही दिखाया, ठीक है। मैं दूसरे दिन बुलाया सबको ब्रह्मा भोजन खिलाना, कहते क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो, 13 दिन तो हो जाने दो। 13 दिन नहीं, मेरी टेलीग्राम आ गई है, मुझे तो वापस जाना कल। फटाफट भूख लगवाया, ब्रह्मा भोजन गांव वाले जो थे, जो माँ के लिए करना था कर दिया। अब तीसरे दिन मैं तैयार चलने के लिए, निकलने के लिए। सब बोलने लगे अभी ऐसे कैसे होगा, अब क्या आगे क्या करना है, इतने 3 घर पड़े हैं, 3 की दुकानें हैं, खेती है, इतना सब है, और तुम छोड़ के यहाँ जा रहे हो, इनको कौन बूढ़ों को संभालेगा, 3 भाई कौन खिलाएगा। मेरा बाबा खिलाएगा, मुझे क्या पता है, मेरे को उसने रखा है, तुम्हारी जवाबदारी वो उसको है। पिताजी बड़े निश्चय बुद्धि थे, चले छुट्टी दिया। तो मैं जब आने लगा तो मैंने एक बात जरूर कही, मैंने कहा ऐसा है कि जो जो सामान है अंदर अंदर का वो मुझे दिखाओ। अब अंदर का सामान क्या होता जानते हो, माताएं क्या रखती हैं। माता जी ने बहुत तैयारी की थी शादी के लिए, सोने के गहने थे बहुत सारे, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां थी, बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे थे, तो बहुत सारा सामान इकट्ठा किया था शादी का, जैसे करते हैं घरों में। तो मैंने कहा यही देखना, माता जी को मुक्ति नहीं मिलेगी, पहले तो वो आत्मा गई ऐसे ही है बंधन से, और दूसरा ये सामान वो इकट्ठा करके गई है, इसलिए मुक्त नहीं होगी, ध्यान रखना, यही घूमेगी इधर, इसको मुक्ति देनी है तो पहले इसको निकाल दो। कहां दे दो, हमने सेंटर पर दे दो या बेच दो, जो करना चाहे, और ये जब निकल जाएगा तब आप लाइट होके कुमार बन जाओगे मेरे जैसे। पिताजी चाचा जी को समझाया और चला आया मैं वहां से। वहां से आया, उन्होंने 1-2 साल में सब जो भी था अंदर का निकाला, इधर उधर किया, और फिर जब हल्के हो गए तो चाचा जी को सरेंडर कराया, बुलाया, पहले सेवा में लगा दिया, अभी भी है, अभी पिताजी को बुला लिया यही मधुबन में। उसके बाद दादाजी ने बड़े प्रयास किए, लेकिन एक भी शक्ति इस बाउंड्री के अंदर उनकी नहीं आई, योग का किला। हम पूछते थे अगर कुछ कर रहे हो मेरे ऊपर, कहते हाँ बहुत कुछ कर रहा हूं, दिखाई देता है मुझे वहां एक बहुत बड़ी लाइट है, और वो लाइट जो है ना, मेरी शक्तियां उस लाइट को देख करके डर जाती हैं, इसलिए वो अंदर प्रवेश नहीं होती और तुम तक पहुंचती नहीं है, नहीं तो मैं तुमको 1 दिन में खींच के ले आऊं वहां से। वो शक्तियां इस पवित्र वायुमंडल में योग के किले के अंदर नहीं प्रवेश हो सकती, मैं ये सुनाना चाहता हूं आपको। आप जिस स्थान पर रहते हो इतने पवित्र शुद्ध आभा मंडल को क्रिएट करो, योग का ऐसा किला बनाओ, पवित्रता का ऐसा किला बनाओ, जो कोई भी परीक्षा, चाहे इविल सोल की क्यों ना हो, कोई भटकती हुई आत्माओं की हो, कोई इच्छा रहित इच्छा वाली आत्मा की हो, आपके ऊपर कुछ भी करके अपने वश में करना चाहे, आपको कोई प्रभाव न पड़े, वो तभी हो सकता है जब आप बहुत पवित्र और शुद्ध विचारों में रहते हो। समाधान स्वरूप आत्मा वही रह सकती है जो एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, बहुत अच्छे विश्वास और निश्चय के साथ बाबा को साथी बना लो, बस मेरा तो एक दूसरा न कोई, सिर्फ कहना नहीं लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा चल के दिखाओ। अगर कहीं पर भी बुद्धि अटकी लटकी है तो खींच लेगी कलयुग के अंत में, अंतिम परीक्षा के अंदर पास नहीं होने पाओगे। इसलिए बहुत बड़ी परीक्षाएं कितनी भी बड़ी आ जाए लेकिन निश्चय रखो बाबा का साथ है, उसका हाथ है, उसकी छत्र छाया है, तो ये कोई भी प्रकार की माया वार नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसे समस्या समाधान स्वरूप बन करके इस भट्टी से बहुत पक्का संकल्प करके जाना, हिलेंगे नहीं डुलेंगे नहीं लेकिन विजयी बन करके पास होकर के जाएंगे। कुछ भी हो जाए कोई हिला नहीं सकता, पांव जमा दिया ना अंगद ने, हिला सकता है कोई अंगद के पांव को? कहता हिला के दिखा दो सीता तुम्हारी हो जाएगी। अब कहां सीता राम की और अंगद उसका दूत, वो जानता है अरे राम की सीता को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, ये मेरे पांव को क्या हिलाएगा। तो आप सभी ऐसे अंगद बन करके, हनुमान बन करके, गणेश बन करके, शिव शक्ति बनकर यहां से जाना। ठीक है, समस्याएं आएंगी पार हो जाओगे, विजयी हो जाओगे, कोई कुछ भी आपको बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है, हैं से लिया सकती बाबा से, तो ऐसा बन करके सब समर्थ बन के जाना। ओम शांति।
ओम शांति। राजू भाई जी, आप 55 साल से यज्ञ में समर्पित है, सॉरी 55 साल से ज्ञान में है और 45 ईयर से यज्ञ में समर्पित है, और मुरली में जो धारणा का सार, वरदान, स्लोगन, अव्यक्त इशारे जो भी आते आप स्वयं लिखते हैं, और स्वउन्नति के लिए जो पत्र पुष्प आता है उसमें भी देश विदेश के समाचार, दादी जी का पत्र आप ही लिखते हैं, और जो भी दादी जी के लिए पत्र आते हैं उसका जवाब देने का काम भी आप ही करते हैं, और हिंदी मुरली का ट्रांसलेट सिंधी में करने का भी सेवा आप ही करते हैं। तो ऐसे आदरणीय राजू भाई ने हमको ज्ञान के बहुत सुंदर सुंदर राज बताए कि कैसे यज्ञ में अनेक समस्याएं आई लेकिन उस समस्या का कैसे समाधान हुआ। अगर हमारा एक बल एक भरोसा है, बाबा से प्यार है, यज्ञ के लिए प्यार है, तो हर समस्या पर हम समाधान स्वरूप बन सकते हैं। तो आपकी क्लास से बहुत कुछ पॉइंट्स लेके उसको हम अपने जीवन की जो भी समस्याएं है उसका समाधान जरूर करेंगे। तो एक हाथ की ताली बजा के सभी राजू भाई का स्वागत भी करेंगे और दिल से सभी धन्यवाद भी करेंगे। अभी आज योग भट्टी का लास्ट दिन है तो बाद में क्या, अच्छा अनिता बहन कुछ बोलना चाहती थी तो रात को फिर 9 बजे समाप्ति के ऊपर कुछ बोलेंगे। ओम शांति।
अभी 3 मिनट सभी योग करेंगे फिर मैं शायद शांति बन जाऊंगा क्योंकि वहां पर मेरी भट्टी भी चल रही है, तो आज उसका भी समाप्ति है और कल टीचर्स बहने वहाँ बहुत है, 2200 है, तो वो भी सब मिलने जुलने आती है, इसलिए मैं शाम अभी रात को ही नीचे जाऊंगा।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
मेरा खुदा